अन्य धर्मों का प्रभाव पृष्ठ 49। बुल्ले शाह के पद्यांशों को पढ़ते समय पाठक को उन पर निम्नांकित धर्मों तथा अन्य मतों का प्रभाव दिखाई देता है। 1. बौद्ध मत, 2. नव अफलातूनवाद, 3. वेदांतिक विचारधारा, 4. नाथ मत, 5. वैष्णव मत, 6. सिख मत। भारत में कादरी श्रृंखला के संतों ने हिंदू विचारधारा और परिपाटी के साथ बहुत सीमा तक समझौता किया है। उन्होंने भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। युवराज दारा शिकोह ने कुछ उपनिषदों पर टीका लिखी है। बुल्ले शाह के मुर्शीद इनायत शाह ने दस्तुरुल मल नामक अपनी पुस्तक में मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न ढंगों का वर्णन किया है। इनमें से सर्वोत्तम साधन साधक को परमहंस की स्थिति तक ऊपर उठा देता है। ग्रीक रहस्यवादियों पर भी इस ज्ञान का प्रभाव पड़ा है। यह ज्ञान उन तक महान अलेक्जेंडर के सेनानी के ले गए थे। तत्पश्चात इस्लाम के रहस्यवादियों ने ग्रीक से यह ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध मत का प्रभाव। बुल्ले शाह के समय में बौद्ध मत भारत में अधिक प्रचलित नहीं था। इसने अपनी मूलावस्था में ही सूफी मत पर अपना प्रभाव डाला था। यह मध्य पूर्वी देशों तथा मिस्र में फैला था। सूफीवाद पर बौद्ध मत के प्रारंभिक प्रभावों को केवल बुल्ले शाह की कविताओं में ही निम्नांकित महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में पाया जा सकता है। 1. संन्यास, 2. रहस्यवादी विचारधारा। यह दोनों ही विषय सूफीवाद के मूल तत्व हैं। इनके अतिरिक्त सूफीवाद में बौद्ध मत के अन्य तत्व हैं। इस संसार को दुखों का घर मानकर इससे वैराग्य लेना, अंतरावलोकन द्वारा हल अवस्था की अनुभूति करना, खग में जीवन यापन करना, पीरों और फकीरों की पूजा करना। बुल्ले शाह ने परंपरा अनुसार इन तत्वों को अपनाया। बुल्ले शाह के काव्य में दुख की धारणा परमात्मा के वियोग के साथ साथ सभी संबंधियों में विद्यमान स्वार्थ भावना के प्रति उत्पन्न होती है। नव अफलातूनवाद का प्रभाव। नव अफलातूनवादियों का मत था कि परमात्मा ही सबका मूल स्रोत है। यह आत्मसृजित है तथा संपूर्ण सृष्टि उसका ही प्रतिबिंब है। अतः समस्त प्रकृति में परमात्मा व्याप्त है। स्थूल या वस्तु जगत में तो अस्थिर, किंतु वह चीर चलायमान प्रतिबिंब है जिसमें दिव्य अथवा ब्रह्म ही मूर्तिमान होता है। नव अफलातूनवादियों का विचार था कि मनुष्य आनंद एवं चिंतन द्वारा ही परमात्मा में पृष्ठ 50 आत्मभूत हो सकता है। सूफी काव्य तथा बुल्ले शाह के काव्य में हमें यह सभी विचार दिखाई देते हैं, किंतु फिर भी ईश्वरीय धारणा के संबंध में नव अफलातूनवादियों तथा सूफियों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। जहां नव अफलातूनवादियों का परमात्मा पूर्ण रूप से अमूर्त था, वहां सूफियों का परमात्मा निस्संदेह रूप से मूर्त अथवा साकार था। संक्षेप में नव अफलातूनवाद आनंद या उल्लास का संप्रदाय था, जिसे बुल्ले शाह के काव्य द्वारा बड़ी सरलता पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है। हिंदू मत का प्रभाव। हिंदू और सूफी विचारों में बहुत समानताएं हैं। हिंदू मत अपने चरम रूप में वेदांतिक विचारधारा ही है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता तीनों के योग से प्रस्थानत्रयी बनी है, जिसमें ब्रह्म विद्या है। हमने पहले देखा है कि सूफियों का वजूदिया संप्रदाय अद्वैतवादी है। यह केवल एक ही सार तत्व अर्थात ब्रह्म में विश्वास रखता है। इस संप्रदाय के विचार में परमात्मा या ब्रह्म ही सर्वस्व है और इसका सिद्धांत है हम ओस्त अर्थात सर्वम ब्रह्म। वेदांतिक मत बहुत पुराना है। प्रस्थानत्रयी पर टीकाएं लिखने वाले शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। उनका दर्शन अद्वैत कहलाता है। उनका सिद्धांत था तत्त्वम असि अर्थात वह तुम ही हो। इसका अर्थ है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। शंकराचार्य के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सर्वातिरिक्त तथा अंतस्थ है। इस प्रकार वहद तुल वजूदिया अद्वैतवाद के समान है। सूफी मत का शुहदिया भी रामानुज के विशिष्टाद्वैत के समान ही है। यह ब्रह्म के ही द्वैत रूप के विषय में बताता है। ब्रह्म के रूप भेदों के बारे में हिंदू दर्शन से सूफियों की तनज्जुलात धारणा बहुत मेल खाती है। सूफी फना की तुलना उपनिषदक मोक्ष से की जा सकती है। हिंदू मत की पुनर्जन्म की धारणा मुस्लिम दर्शन में नहीं पाई जाती। चूंकि बुल्ले शाह ने अपने एक काफिये में आवागौन शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए पंजाबी सूफी कवियों नामक पुस्तक के लेखिका लाजवंती रामकृष्ण का विचार है कि बुल्ले शाह पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आवागौन का शब्द संसार में सामान्य तौर पर आने अर्थात जन्म और जाने अर्थात मृत्यु का संकेत देता है। इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप दिए गए उदाहरणों के आधार पर द इंडियन मुस्लिम्स के लेखक डॉक्टर मुजीब ने भी उपरोक्त दावे का खंडन किया है। व्यवहारिक जीवन में सालिक को पीर मुर्शीद या किसी शेख के निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसका उस हिंदू साधक के व्यवहारिक जीवन से निकट संबंध है जिसे आध्यात्मिक मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए गुरु का निर्देशन प्राप्त करना पड़ता है। पृष्ठ 51। नाथ मत का प्रभाव। कहा जाता है कि ग्वालियर के 47 संत शेख मोहम्मद धौथ ने संस्कृत का अध्ययन कर कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पुस्तक खालिदे मखाजिन अर्थात खजाने की कुंजी में सूफी और ज्योतिष सिद्धांतों का मिश्रण है। बहरहाल हयात अर्थात जीवन सागर शीर्षक की उनकी एक अन्य पुस्तक में योगियों द्वारा किए गए आत्मनिग्रह और प्राणायाम के तरीके वर्णित हैं। शतारी योगाभ्यास और प्राणायाम का प्रभाव कादरियों पर भी पड़ा। समा के प्राणायाम के समानांतर ही व्यक्तिगत अर्थात धिक्र विधाओं के अभ्यास थे। योगाभ्यास के नियमों से संबंधित संस्कृत में अमृत कुंड के अरबी और फारसी अनुवाद भी उपलब्ध थे। बुल्ले शाह ने अपने शतारी बुजुर्गों से ही योगियों के प्राणायाम में रुचि लेनी आरंभ की। उन्होंने अपने एक काफिये में लिखा है, तय कारण हफसी होए हां, नौ दरवाजे बंद कर सोए हां, दर दसवे आन खोलो खलोए हां, कदे मन मेरी असनाई। अर्थात तुम्हारे कारण ही मैं हफसी अर्थात प्राणायाम करने वाला योगी बन गया हूँ। मैं नौ द्वार, दो नेत्र, दो कान, दो नथुने, एक मुख और प्रसव एवं अपनयन अंग बंद करके सो गया हूँ। मैं दसवें द्वार पर खड़ा हूँ, कृपया मेरा प्रेम स्वीकार करो। बुल्ले शाह ने अनहत शब्द के विषय में भी कहा है। वैष्णव मत का प्रभाव। वैष्णव मत भारत में एक प्रमुख भक्ति वाद रहा है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्ति कहते हैं, जो कि पूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था होती है। इस अवस्था में आशिक या प्रेमी अपने इष्ट परमात्मा की पसंद के अनुरूप ही कामना करता है। उसे दृढ़ विश्वास होता है कि परमात्मा उसकी रक्षा करेगा। वह स्वयं को अकिंचन मानकर ईश्वर की सेवा भक्ति कर उसकी शरण मांगता है। यह सभी तत्व हमें बुल्ले शाह के काव्य में मिलते हैं। वैष्णव मत में नारायण की उपस्थिति का लाभ उठाना ही चरम लक्ष्य है, किंतु नारायण की कृपा बिना यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुल्ले शाह ने प्रियतम की फदल अर्थात कृपा का भी जिक्र किया है। उनके काफियों में हमें परमात्मा की प्राप्ति अर्थात भार्या भक्ति मिलती है। वैष्णव मत में इसे कांता भक्ति कहते हैं। बुल्ले के काव्य में कई स्थलों पर वैष्णवी प्रभाव बड़ा गहरा दिखाई देता है। वह अपने इष्ट को कृष्ण या श्याम सुंदर कहते हैं। अपने एक काफिये में उन्होंने कहा है, मुरलीबाज उठी अंधाता, सुन सुन भूल गया सब बाता। पृष्ठ 52। सुन सुन श्याम सुंदर दिया बाता, बुल्ले श्याम है तद बिरलाई, जद्दी मुरली कान बजाई, बौरी हाके तैं वल धाई, कहो जी कित वल दस्त बनाता। अर्थात भगवान कृष्ण ने अचानक मुरली बजाई अपने प्रीतम की बांसुरी तथा बातें सुनकर मैं तो अन्य सब कुछ भूल गया। जब कान्हा ने मुरली बजाई तो मैं बुल्ले शाह दुख से रो पड़ा। मैं पागल होकर उनकी ओर दौड़ा। प्रेमिका या प्रेमी अर्थात गोपी ने पूछा कि ये प्रेमोपहार किसके साथ बांट रहे हो। एक अन्य काफिए ने बुल्ले शाह ने अपने इष्ट को कान्ह अर्थात कृष्ण कहकर संबोधित किया है। बंसी कान अचरज बजाई अर्थात भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बंसी बजाई। सिख मत का प्रभाव। कादरी सिख आंदोलन का बहुत आदर करते थे। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव के अनुरोध पर महान कादरी संत मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किया था। बुल्ले शाह स्वयं भी सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को उनकी अनोखी कुर्बानी के लिए तथा दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा भ्रष्ट शासकों के विरुद्ध किसानों की फौज बनाने के कार्य के प्रति उन्हें श्रद्धा पूर्ण स्मरण करते हैं। उनके अनुसार कहूं तेग बहादुर गाजी हो कहूं अपना पंथ बनाया है अर्थात हे खुदा कहीं तो तुम शहीद तेग बहादुर के रूप में प्रकट होते हो और कहीं तुमने अपना ही पंथ बनाया है। यह पंथ सिख आंदोलन का ही संकेत होता देता है। मुगल क्रूर शासकों के प्रति विद्रोह करने वाले मोटे और खुरदरे वस्त्रधारी सिख किसानों को बुल्ले ने भूरिया वाले कहा है। सिख और सूफी दोनों ही एक ईश्वर के प्रेमी थे जो अपने गुरुओं द्वारा मार्गदर्शित थे। दोनों ही संगीत उत्सव मनाते थे और ईश्वर के भजन कीर्तन गाते थे। दोनों को ही संगीत की राग रागिनियां प्रिय थी। बुल्ले शाह ने विभिन्न रागों में अपने काफिये लिखे हैं। समाप्त।